શ્રી પ્રવચનસાર ગાથા 273 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 171.
અનવિધ ધર્મ કો જાણને વાળા જ્ઞાન દ્વારા સકલ જ્ઞાતૃ તત્વ ઓર જ્ઞેય તત્વ કે યથાસ્થિત સ્વરૂપ મેં જો કમી હૈ, માતૃ તત્વ અપના આત્મા હૈ ઓર જ્ઞેય તત્વ સકલ પરદ્રવ્ય હૈ, અનેકાંતિક જ્ઞાન દ્વારા જ્ઞાત મેને જાનને મેં આયા હુઆ જો જાનને મેં આ ગયા હૈ એસા અપના જ્ઞાતૃ તત્વ જ્ઞાયક આત્મા ઓર પરદ્રવ્ય જ્ઞેય તત્વ યથાસ્થિત મેને જૈસા હૈ વૈસા અવિકૃત રૂપ મેં અસલ રૂપ મેં વિકૃત પદાર્થ કા સ્વરૂપ જૈસા હૈ એસા નહીં જાને, અન્યથા જાને, વિપરીત જાને, વિભ્રમિત હોકર ઉસમેં કુછ દૂસરી દૂસરી કલ્પના કરે, વો પદાર્થ કા યથાસ્થિત જાનના હૈ. યથાસ્થિત સ્વરૂપ મેં જો ભ્રમે જ્ઞાત જ્ઞાત હો ગયા હૈ, જ્ઞાતૃ તત્વ ઓર જ્ઞેય તત્વ કે યથાસ્થિત સ્વરૂપ ઇસકો જાનને મેં જો પ્રવીણ હૈ, અનેકાંત દ્વારા જો યથાસ્થિતપણે જાના ગયા હૈ પ્રવીણ મેને કુશળ, ઇસમે કોઈ ગલતી હોતી નહીં, ઇસકો પ્રવીણ મેં એક્સપર્ટ કહેતે હૈ. સ્વ પર પદાર્થ મેં સ્વ કો અપને સ્વરૂપ જાનના ઓર પર કે પર સ્વરૂપ પર કો પર સ્વરૂપ મેં જાનના, એસા સ્વ પર વિભાગ, સ્વ પર હૈ અલગ અલગ ભિન્ન ભિન્ન ઓર ભિન્ન ભિન્ન કો ભિન્ન ભિન્ન જાનને મેં જો એક્સપર્ટ હૈ ઉસમે ગલતી હોતી નહીં. શરીર મેં વેદના હોતી હૈ, રોગ આતા હૈ મુઝેકો ભી રોગ હોતા હૈ, તો શરીર મેં વેદના હોતી હૈ વો પુદ્ગલ કી પર્યાય હૈ, વો જીવ કી પર્યાય નહીં, પરમાણુ કી વિકૃતિ હૈ ને શરીર કી વિકૃતિ હૈ, ઓર પરિણમન જો હૈ વેદના કા જો પરિણમન હૈ અસાતા વેદની કા ઉદેશ હૈ, અંદર કર્મ કા ઉદય અસાતા વિઘ્ન કા આઘાતી કા હૈ, વો ભી કર્મ કી વો પુદ્ગલ કી પર્યાય ઓર કર્મ ફળ નો કર્મ મેં જો શરીર મેં ફેરફાર હૈ પરમાણુ કા પરિણમ વેદના રૂપ, જો વેદના કા દુઃખ હૈ વો સ્વાદ હૈ પુદ્ગલ કા, જીવ કા પરિણમ નહીં. જીવ કા જ્ઞાન કા પર્યાય મેં ઇસકા ફોટો પડતા હૈ, ઓર અયથાર્થ જાનને વાલા એસા જાનતા હૈ કે વેદના મુજે હો રહી હૈ, મેરે મેં હો રહી હૈ, ઓર ઇસલિયે વેદના મેં સહન કર સકતા નહીં, એસા જાનતા યથાસ્થિત નહીં જાના, અયથાર્થ રૂપ મેં હો જાના હૈ. તો જ્ઞાતૃ તત્વ ઓર જ્ઞેય તત્વ ઇસલિયે લિયા હૈ કે દોનો ભિન્ન ભિન્ન તત્વ હૈ, જો જ્ઞાતૃ તત્વ હૈ વો જ્ઞેય તત્વ નહીં, જ્ઞેય તત્વ હૈ વો જ્ઞાતૃ તત્વ નહીં. શરીર કી વેદના જ્ઞેય તત્વ મેં જાતી હૈ, અભી ઠંડ પડતી હૈ વો ઠંડ જ્ઞેય તત્વ મેં જાતી હૈ, મિત ઓર યથાર્થ જ્ઞાન મેં એસા આતા હૈ કે ઠંડ મુજે લગતી હૈ, વાસ્તવ મેં ઠંડ જ્ઞાતૃ તત્વ મેં જાનને મેં આતી હૈ, જ્ઞાતૃ તત્વ મેં જ્ઞેય તત્વ રૂપ ઠંડ કા પ્રવેશ નહીં, સ્પર્શ નહીં ઓર અસર ભી નહીં, ઉસમે વો પ્રવેશતી હૈ ये वातावरण की परमाणु की पर्याय है, उष्ण शीत, वो शीत उष्ण वो वातावरण के परमाणु की पर्याय है। वातावरण में जो रहे हुए परमाणु है, हवा जिसको बोलते हैं, ये हवा के परमाणु की पर अवस्था है। तो शीत अवस्था ज्ञायक तत्व में, ज्ञातृ तत्व में प्रवेश पाती नहीं, उसको स्पर्श कर सकती नहीं, और ज्ञातृ तत्व में उसका कोई असर वो डाल सके, इसलिए ऐसा लगे कि मुझे ठंड लगती है, तो भी नहीं ऐसा कभी बन सकता। फिर भी प्रमीर भ्रमित ज्ञान में ऐसा होता है कि मुझे लगती है, मुझे लगती है तो मुझे उसका कोई इससे रक्षण करना चाहिए, ऐसी बात है। वेदनी नाम क्या थी पीड़ित, वेदनी कर्म छे, એમાં સાતા ને અસાતા એવા બે વિભાગ ક્યાંથી આવ્યા? પૂતગલ નો પર્યાય છે, સ્વાદ પૂતગલ નો છે। આત્મા મેં એસા વેદના કા આત્મા કા સ્વાદ હી નહીં હૈ, અનાકુળ આનંદ રસ વો આત્મા મેં ભરા હૈ। કોઈ વેદના કા ભાવ જૈસા વેદન મેં આતા હૈ દુઃખ રૂપ, ऐसा आत्मा में कभी है ही नहीं, उसका गंध भी नहीं। इतना एकत्व हो जाता है वेदना से कि वेदना मेरे से कोई भिन्न चीज है, नई तत्व है, उसकी कल्पना भी जीव कर सकता नहीं वेदना के काल में। મુખનું વેદન અહીંયા હોજરી ને ઉષ્ણ પર્યાય હોતી હૈ, ઓર ભૂખ કા વેદન વો ઉસકા પર્યાય હૈ, ઇસકો વેદન બોલતે હૈ। વો જ્ઞાન મેં તો સિર્ફ જ્ઞે હી હૈ, ફિર ભી વો માનતા હૈ કે મુજે ભૂખ લગતી હૈ, યે વેદન મુજે ભૂખ કહતા હૈ। આત્મા કો કભી ભૂખ લગતી लेकिन ऐसा तन्मय होता है, इतने हद में एकत्व करता है, परिपूर्ण एकत्व। ये भूख की वेदना मुझे नहीं, मेरी नहीं, ऐसी कल्पना वो नहीं कर सकता, नहीं विचार सुद्धा नहीं कर सकता। पूरी के कारण एकत्व तदाकार परिणाम तदाकार, जैसे मैं ही हूं ऐसा विकल्प नहीं करना पड़ता, ऐसा विकल्प करना पड़ता नहीं, परिणाम नहीं हो जाता है, बिना विकल्प सीधा ही परिणाम हो जाता है। यहाँ कहते हैं कि जो मुनि भगवंत है, जिसको यहाँ शुद्ध कहेंगे, भगवंत शुद्ध ऐसा शब्द दिया है अमृत चंद्राचार्य ने, भगवंत शुद्धा ऐसा शब्द लिया है। समस्त अनुभव अनुभावंतो भगवंत शुद्धा, संस्कृत टीका में ऐसा शब्द पड़ा है। कैसे हैं मुनि भगवंत कि जो ऐसे पर भिन्न ज्ञेय को भिन्न रूप में जानने में कुशल है, प्रवीण है, थोड़ी भी गलती होती नहीं, अंतरंग में चकचकित होते हुए अनंत शक्ति वाले चैतन्य से भास्वर, भास्वर मैंने तेजस्वी आत्म तत्व के स्वरूप को, जिनने समस्त बहिरंग तथा अंतरंग शक्ति के परित्याग से विविक्त किया है, भिन्न किया है। कैसे भिन्न किया कि जो अपने अपना स्वरूप है वो अंतरंग में चकचकीत है, दिखता है क्या? आचार्य महाराज कहते हैं कि हमारे चैतन्य स्वरूप आत्मा हमारे अंतरंग में चकचकीत है, जो सूर्य से भी चकचकीत है। सूर्य में, सूर्य के तो सामने नहीं देख सके, वो तेज लगता है आंख को, तो अंतरंग में चकचकीत परिपूर्ण ज्ञान तत्व से चकचकीत, ज्ञान प्रकाश से चकचकीत हुए अनंत शक्ति वाले, अपरिमित शक्ति वाले, जिसका ज्ञान स्वभाव अपरिमित है, अद्भुत आश्चर्यात्मक है, जिसका स्वभाव को देखने को जाए, देखने वाला उपयोग इसमें डूब जाता है, ऐसा अनंत शक्ति वाला चैतन्य है जो तेजस्वी है, ऐसे आत्म तत्व के स्वरूप को, ऐसा निज स्वरूप को जिनने समस्त बहिरंग तथा अंतरंग संगति के परित्याग से विविक्त नाम भिन्न किया है, अपना स्वरूप को जानते हुए, असंग तत्व को जानते हुए, बहिरंग और अंतरंग संगति से भिन्न जाना, भिन्न जाना उसको भिन्न किया, ऐसा कहने में आता है। अंतरंग तत्व है ही असंग तत्व, कोई इसमें अंतरंग में इसका राग का विकार का संग नहीं, बाहर में राग विकार का विषय का संग आत्मा को नहीं, ऐसा जो अपना असल स्वरूप, उसको जैसा है वैसा यथास्थित जाना, तो जाना इसका मतलब है अंतरंग बहिरंग संगति से उसका परित्याग किया। और इसलिए अंत तत्व की वृत्ति में आत्मोन्मुख हुई परिणति, आत्मा की परिणति, स्वरूप गुप्त मुनि की परिणति स्वरूप में घुस गई है, ऊंडे उतर गई है, इतना उपयोग अंतर्मुख हुआ है, स्वसन्मुख हुआ है, इससे ज्यादा स्वरूप में गुप्त हो गया, डूब गया उपयोग। जैसे बाहर निकलने में जिसको कठिनता पड़ती है, अंत तत्व की वृत्ति स्वरूप गुप्त तथा सुषुप्त, बहुत निंद्रा आती है उसको सुषुप्त कहते हैं, जगाने को कोई जाए जगे जागे नहीं, सुषुप्त हो गया, वैसे जैसे परद्रव्य की सावधानी खत्म हो गई, ये अस्थि नास्ति लिया, स्वरूप में गुप्त अस्थि से लिया गया, अपने स्वरूप में उपयोग इतना एकाकार, स्वरूप भावना का बल इतना है इसमें कि अंदर में गुप्त हो गया, वो बाहर का पदार्थ है देखे तो सुषुप्त हो गया, बाह्य पदार्थ प्रत्येक उत्सुकता आती नहीं, ऐसा सुषुप्त जैसे कि सो गया हो, गाढ़ निंद्रा में सो गया हो, बाह्य चेतना की चेष्टा बाह्य पदार्थ प्रकृति कुछ नहीं दिखे, ऐसा मुनीष धोप योग में अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं, मोक्ष तत्व का साधन शुद्धोपयोगी मुनि कैसा होता है, ये बात है इसमें। मोक्ष तत्व का साधन, अनन्य साधन, ऐसा शुद्धोपयोग होने वाले मुनि को शीघ्र ही मोक्ष हो जाता है। अंतरंग में चकचकित शुद्धात्मा का अनंत स्वभाव का वैभव पड़ा, इतना वैभव है, इतना वैभव है कि इसकी कोई बार में दिखाने की कोई चीज है नहीं सामने, क्या कहें। इसलिए तो कहते हैं कि तुम अनुभव करके देखो, अगर तुमको देखना है कि आत्मा कैसा है और क्या चीज है, तो अपनी चीज को अंतरंग अंतर्मुख होके अनुभव करके देखो। सब इसमें इसका ज्ञान पूरा हो जाएगा, एक अनुभव में पूरा आत्मा का ज्ञान हो जाएगा कैसा आत्मा है। बुद्धू कहते हैं कि जैसा केवल ज्ञान में आत्मा आता है, वैसा आत्मा, वही आत्मा एक ही है ना, वो प्रथम अनुभव में सम्यक दर्शन में आता है। देखो ना, एक क्षण का सम्यक दर्शन, इनकी ताकत देखो तो अनंत भव भ्रमण का छेद हो जाता है, एक में छेद हो जाता है, परिभ्रमण उसका खत्म हो जाता है, अंत आ गया। तो दो चार भव हो तो वो कोई गिनती की चीज रहती, कहाँ अनंत और कहाँ दो चार की संख्या, कुछ नहीं है इसका। अनंतानुबंधी खत्म हुआ और उनका भव भ्रमण भी रहने वाला है, छेद हो गया। जैसे कोई मूल का छेद हो जाता है, फिर कोई उसमें आगे नई फसल इसमें आती है। स्वरूप गुप्त तथा सुषुप्त, जैसे कि सो गया हो, समान रहने से, मैंने प्रशांत रहने से, जो विषयों में किंचित भी आसक्ति को प्राप्त नहीं होते, सुषुप्त हो गया हो, समान मैंने प्रशांत रहने से, समान शब्द गुजरात में समान थे, समान शब्द वाइज समान रहने से, मैंने सम जो विषयों में किंचित भी आसक्ति को प्राप्त नहीं होते, मैंने पांच इंद्रियों के विषयों में बिल्कुल अनुकूलपणा, ठीकपणा, सुख का भाव मुनि को कभी होता है नहीं। वो तो आत्मा से जो वृत्ति बाहर निकल के पर विषय के प्रति उत्पन्न होती है, वो आकुलता के साथ, आकुलता सहित उसका परिणमन होता है, उसमें सुख होने का सवाल नहीं। सुब्रमण्य जी ने दृष्टांत लिया है, इंद्र है, कौधर्म इंद्र, शक्र इंद्र, इंद्र भगवान का जन्म, तीर्थंकर भगवान का जन्म होते हैं, गायुष इतना बड़ा है, कितने ही तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक में एक ही इंद्र को जाने का प्रसंग होता है, इतना बड़ा है उसे, मनुष्य देवायु बड़ा है इतना, एक इंद्र अनेक तीर्थंकरों के जन्म के उत्सव को मनाते हैं। तो भगवान का जन्म होता है, वितरागता का इतना महिमा है, वो खुद में दृष्टि है ना, वितराग भाव का और वितराग मार्ग का इतना महिमा है कि वो आनंदित होते हुए नृत्य करता है भगवान के सामने, इतना बड़ा होते हुए भी इसका पुण्य बहुत है इंद्र का, फिर भी वो इतना छोटापन अनुभव करता है कि वो खुद नृत्य करता है। बड़े लोग कभी नृत्य करते हैं नहीं, लेकिन इससे भी बड़े हैं, इससे भी महिमावंत हैं, क्योंकि भगवान तो अभी बाल्यावस्था में, मनुष्य की बाल्यावस्था में, अभी अभी भगवान की दशा तो प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन वो नैगम में से अभी उनको भगवान देखते हैं। तो देखो ये जगत के अनेक जीवों को मोक्ष होने में, तीरने में वो निमित होने वाले हैं, ऐसे जबरदस्त महाप्रभावशाली जगत गुरु आत्मा है, तो उनके आगे नृत्य करते हैं। नृत्य करते हैं तो बाहर से देखने वाले को तो हर्ष देखने में आवे, कितना आनंदित हो गया है इंद्र को, कितना आनंद है, लेकिन वो आनंद आनंद है इसको गाने की मिली है चर्चा में। अगर वो इंद्र की अपनी जो अंतरंग परिणति है, जो परिणति नृत्य के काल में भी अपना स्वरूप से अभेद लपेट होकर परिणत हुई है और परिणम रही है, ऐसी परिणति निराकुल सुख की, आत्मिक सुख की जो परिणति है, जिसमें आत्मिक शांति है, उसके मुकाबले में तो ये आनंद का, बाह्य आनंद का, उत्सव का, प्रसंग का भाव दुख रूप है, इसमें सुख है ऐसा लिया। मुकाबला किससे करना है, स्वभाव है और लक्ष्य है भगवान के प्रति, तो इसमें उल्लास परिणमन में उल्लास देखने में आता है, एक परद्रव्यस्य परिणति पराधीन हुआ है उपयोग, वो पराधीनता में कभी भी सुख होता है। यहाँ ये लिया है कि प्रशांत रहने से अपना स्वरूप में ठहर गया है, क्या बोलता है हिंदी में, ठहर गया है, जम गया है, इससे जो किंचित भी बाह्य विषय है इसमें उसको आसक्ति होती, आसक्ति का राग ही उत्पन्न होता नहीं। श्रीमद जी ने तो बहुत लिया, वंदे चक्री तथापि नमले मान जो, चक्रवर्ती की सेना निकलती है, शैखंड का अधिपति है, वंदन नमस्कार करने के लिए सारी सेना रुक जाती है, कहते हैं कि उसका कोई मान का भाव होता, ये तो अपने स्वरूप में गुप्त है, देख लिया जान लिया तो जान लिया, इससे कोई अपनी महिमा है ऐसा है। यहाँ तो लोगों का कुछ मान सम्मान का प्रसंग हो जाए नहीं होते, ऐसे जो सकल महिमावान भगवंत शुद्ध हो भी शुद्ध है, ऐसे जो सकल महिमावान है, ऐसे जो मुनि भगवान है, वो सकल महिमावान है, सकल महिमा उसको देने योग्य है, पूरी महिमा करनी चाहिए, पूरे महिमावंत है, विद्रागी मुनि है, विद्राग भाव से परिणत है, अपना स्वरूप में लीन गुप्त हुए हैं, किसी भी पंचेंद्रीय विषय में कोई आसक्ति का किंचित मात्र परिणाम होता नहीं, ऐसे जो सकल महिमावान भगवंत शुद्ध है, मैंने भगवंत शुद्धोपयोगी है, उनने ही मोक्ष तत्व का साधन तत्व जानना है। ऐसे शुद्धोपयोगी मुनि भगवान को भगवंत का है, पंच परमेष्ठी पद में है ना, उन्हें ही मोक्ष तत्व का साधन तत्व जानना है, अर्थात वे शुद्धोपयोगी मोक्ष मार्ग रूप है, साधन मैंने मार्ग, मोक्ष को पाने वाला जो मार्ग है, उपाय है, उसको मुनि भगवान को मार्ग में मूर्त रूप में गिनने में आया है। अष्टपाहुड़ में तो बहुत लिखा है, शुरू में दर्शन पाहुड़, जैन दर्शन जिन मार्ग जिसको बोलने में आता है, ये जो मुनि भगवंत है ये मूर्ति मंत मोक्ष मार्ग है। ऐसे तो आत्मा का मोक्ष मार्ग है, अरूपी है, अमूर्तिक है परिणाम, फिर भी मुनि भगवान को मूर्ति मंत मोक्ष मार्ग कहने में आया है। अगर मोक्ष मार्ग की मूर्ति किसको जिसको देखनी है, तो ये मुनि भगवान को देखे, तो ये मूर्ति मंत मोक्ष मार्ग जिन मार्ग कहने में आया है। अनन्य साधन ऐसा मुनि के लायक शुद्धोपयोग जिसको हो, ऐसा शुद्धोपयोग ही मोक्ष का अनन्य कारण है। पूर्ण शुद्धि का ऐसा प्रयत्न ही पूर्ण शुद्धि में ले जाता है। मतलब कहने का ये है कि मुनि योग्य जो शुद्धोपयोग होता है अंतर्लीनता का, एक ऐसा एक प्रोसेस है पूर्ण मुक्ति का, पूर्ण शुद्धि का, कि ऐसी शुद्धि होने वाला पूर्ण हो जाता है, ऐसी शुद्धि में नहीं आवे और पूर्ण शुद्ध हो जावे, ऐसा कभी बन सकता नहीं। इसलिए ये मुनि की पर्याय मोक्ष की पूर्व पर्याय होते हुए भी उसको साधन कहने में आया। ये तो व्यवहार की बात हो गई ना, पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय का साधन है वो निश्चय नहीं है, ये व्यवहार है। फिर भी व्यवहार होने योग्य परिणाम पर व्यवहार का आरोप डाला जाता है, उपचार के जो योग्य होता है उसके पर उपचार किया जाता है, उपचार के योग्य नहीं होते उसके ऊपर उपचार भी किया जाता है। इसलिए उनको साधन बताया, साधन कहने में ही है, वो साधन खुद व्याप्त नहीं होता, साध्य में साधन खुद व्याप्त होता नहीं, लेकिन परिणाम का क्रम, परिणाम के सिद्धांत को देखा जाए तो परिणाम का क्रम ही ऐसा है कि ऐसा शुद्धोपयोग हुए बाद में ही पूर्ण शुद्धि हुए, ऐसा बताने के लिए उसको साधन कहने में आता है। क्योंकि वे अनादि संसार से रचित बंद रहते हुए विकट कर्म कपाट को तोड़ने खोलने के अति उग्र प्रयत्न से पराक्रम प्रकट कर रहे हैं, क्यों उसको साधन तत्व माना गया है, इसका कारण लिया, क्योंकि वे मुनि अनादि संसार से रचित बंद रहे हुए विकट कर्म कपाट को खोलने के खोलने का अति प्रयत्न मार रहे हैं। ये संसार का जो कर्म कपाट है, अनंत काल में इतने प्रकार के कर्म किया है, ऐसा ऐसा भाव किया है और इसके निमित्त से ऐसा कर्म बंधा हुआ है, ये कर्म कपाट को तोड़ने के लिए खोलने के लिए ऐसा शुद्धोपयोगी कामयाब होता है। मुक्ति की जगह तो वहां होती है कि मुनि योग्य शुद्धोपयोग हो गए वहां, इसके पहले साक्षात मुक्ति से निकटपना कभी होता है, मूल में आ जाता है। लेकिन चारित्र अनुसार जो शुद्धोपयोग है, ऐसा मुनियोग शुद्धोपयोग हुए बिना मुक्ति कभी होती, इसलिए कहा कि चारित्र बिना मुक्ति नहीं। कोई चारित्र मैंने कोई दीक्षा ले लिया इसलिए चारित्र हो गया, ऐसी बात है नहीं। चारित्र मैंने स्वरूप में चलना, स्वरूप में रमना, जम जाना, ये चारित्र है। और ऐसा चारित्र मुनियोग्य दिशा में आता है तब बाद में मुक्ति हो जाती है, इसलिए उसको साधन तत्व कहने में यही मोक्ष मार्ग है। ये 275 ये 265 किताब है, जयसेनाचार्य देव की संस्कृत टीका है। बहुत देर बाद के बाद में अथो मोक्ष कारणम आख्याति, अब इस गाथा में मोक्ष का कारण को कहने में आता है। मैंने मोक्ष का कारण जो मोक्ष मार्ग, उस मार्ग का आचार्य देव इस गाथा में व्याख्यान करेंगे। समम विविध पदत्था, समम मैंने सम्यक प्रकार, संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित, अनंत ज्ञानादि स्वभाव निज परमात्म पदार्थ प्रभृति, समस्त वस्तु विचार चतुर चित्त चातुर्य प्रकाश मान, सातिशय परम विवेक ज्योति सा सम्यक विदित पदार्था। क्या कहा कि जिसमें संशय विपर्य और अन्य अनध्यवसाय नहीं है, संशय नहीं, शंका नहीं है, ऐसा होगा या कैसा होगा किसको मालूम, आत्मा अनंत ज्ञान स्वभाव वाला है, शरीर से भिन्न है, भिन्न होगा कि नहीं होगा किसको पता है, अपने को तो कोई पता लगता नहीं। वेदना होवे, एकाकार हो जाए तो पता लगता है, इसको मालूम क्या होगा, कहते हैं लोग वो संशय विपर्य विपरीत विपरीतपणा और अनध्यवसाय भ्रमितपणा, इससे रहित जिसके ज्ञान में संशय नहीं है, विपर्यासपणा नहीं है, विपरीतपणा नहीं है, भ्रमितपणा नहीं, अन्यथा कल्पना होती नहीं, आत्मा का स्वरूप के विषय में अन्यथा कल्पना होती नहीं, जैसा है वैसा ज्ञान में अनुभव में आता है। बहुत बड़ी बात है ये 70-18 गाथा अनुसार की है कि आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभूति स्वरूप, भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, अब तुझे भ्रम करने की जरूरत नहीं, अब तुझे भ्रम नहीं होना चाहिए। हम क्या आबाल गोपाल सभी को, मतलब अभी तुमको भी अनुभूति स्वरूप जो अनुभव में आ रहा है, अनुभवी जिसका स्वरूप है, ऐसा भगवान आत्मा ही अनुभव में आ रहा है। तो प्रत्यक्ष बात कर दिया, संशय विपर्य और अनुध्या अनुध्यवसाय रही आनंद ज्ञान आदि स्वभाव ऐसा दिखने में आता है। अविपरीत ज्ञान में अनंत ज्ञान आदि स्वभाव मेरा स्वरूप अनंत अनंत अपरिमित ज्ञान स्वभाव स्वरूप है, ऐसा अनंत ज्ञान आदि स्वभाव निज परमार्थ परमात्म पदार्थ अपना परम आत्म पदार्थ, आत्मा का जो परम स्वरूप, ऐसा जो अपना पदार्थ प्रवृत्ति मैंने वहां से लेकर समस्त वस्तु दूसरे जितने भी जगत के भिन्न पदार्थ हैं, कितने हैं, क्या क्या है, कैसा है, ये कोई प्रयोजन का विषय नहीं। अपने आप परम पदार्थ से लेकर दूसरी भिन्न समस्त वस्तु, विचार चतुर चित्त चातुर्य, जिसके विचार में इसका ज्ञान चित्त में ज्ञान प्रवीण है, कुशल है, एक्सपर्ट है, कि मेरा जो ज्ञान अनंत ज्ञान स्वभाव ज्ञान लक्षण द्वारा जैसा है वैसा यथास्थित ज्ञान में अनुभव में आता है, और इसमें नहीं है ऐसे जितने भी इससे अतिरिक्त पदार्थ हैं, भिन्न पदार्थ हैं, ये मेरे से भिन्न है। भिन्नपणा जानना इतना ही पर पदार्थ का ज्ञान का प्रयोजन है। पर पदार्थ कैसा है, कितना है, कितने कितने किस किस प्रकार के हैं, वो कोई प्रयोजन का विषय नहीं। समस्त वस्तु इतने में ले लिया, ऐसा विचार चतुर चित्त चातुर्य, जिसका ज्ञान में चतुर और चातुर्य दो विशेषण लिया है, परिणमन में इतना जिसको प्रवीणपणा है, ऐसा प्रकाशमान सातिशय परम विवेक ज्योति सा, ऐसा अतिशय अतिशय मैंने जिसमें असाधारणपणा है, असाधारण तौर से जो स्वपर की भिन्नता करता है, इसको सातिशय परम विवेक ज्योति कहने में आती है। ज्योति मैंने ज्ञान, भिन्न भिन्न करने की ज्ञान की पर्याय को विवेक ज्योति कहने में। पर पदार्थ अपने में नहीं होते हुए भी पर पदार्थ को अपने में अनुभव करना वो घोर अविवेक है, ऐसा कहते हैं। पर पदार्थ अपना नहीं है और अपना नहीं होते हुए भी उसमें अपनत्व करना वो घोर अविवेक है। और अनादि से ऐसा जो अविवेक हो रहा है, जो संसार रूप है, परिभ्रमण का कारण है, उस विवेक को मिटा देना और स्वपर की भिन्नता करना, उसको सातिशय परम विवेक ज्योति कहने में आती है। ऐसी विवेक ज्योति द्वारा ज्योति शास्त्र की विभक्ति है, ऐसी परम विवेक ज्योति द्वारा सम्यक विदित पदार्थ, जिसने सम्यक प्रकार पदार्थ को, सम्यक प्रकार से पदार्थ को विदित मैंने ज्ञान में जाना है, सम्यक मैंने सत्य रूप से स्वपर भिन्न जैसा है ऐसा यथा स्थित पदार्थ को जाना है, पुनरपि किम रूपा, फिर भी कैसा है, कैसा कैसे रूप है, ये मुनि भगवंत की बात चलती है। कैसे मुनि भगवंत जिसको शुद्ध कहने में आया, कुंदाचार्य देव ने शुद्धाति निदिष्ठा ऐसा शब्द लिखा है, इसको शुद्ध निर्दिष्ट करने में आया है। वो शुद्ध मैंने कैसा है मना, थोड़ा भी कनिक भी मना कर थोड़ा क्या था, पंचेंद्रिय विषय आधीन रहितत्व न, अपनी जो आत्मा है वो पांच इंद्रियों का विषय का आधीनता से रहित है। इंद्रिय विषय के आधीन हो जाता है ऐसा आत्मा है, इसे विकृत होना है। पांच इंद्रियों विषय आधीन रहितत्व न, इससे रहितपना होने के कारण होने से निज आत्म तत्व भावना रूप को पांच इंद्रियों का मेरा विशेष सवाल आगे, वो अपना परम स्वरूप की जो भावना नाम एकाग्रता, वो रूप जो परम समाधि रूप परम समाधि है, वो परम समाधि से संजात उत्पन्न हुआ, परम समाधि में पैदा होने वाला परमानंद एक लक्षण सुख, जो सुख का लक्षण परमानंद है, विकराग निर्विकल्प शुद्धोपयोग की जो समाधि है, वो समाधि में परमानंद जिसको कहने में आवे ऐसा सुख उत्पन्न होता है। तो जो सुख पांच इंद्रियों के विषय में कभी भी उत्पन्न होता वहां तो दुख होता है, अगर दुख नहीं होता तो कोई विषय बदलते, जहां जिसको सुख लगे वहां ही अनंत काल है, लेकिन अंतर्मूर्त में विषय बदल जाता वो भी कह सकता नहीं। किसी भी इंद्रिय विषय में उपयोग जाता है वो अंतर्मूर्त में पलटा मारता है, दुख में कहाँ तक ठहरे, दुख में वो ठहर सकता नहीं। सुख का अभिप्राय बनाया है, मेरा सुख यहाँ है, सुख मुझे मिलता है ऐसा अभिप्राय बनाया हुआ बनाया है, फिर भी वास्तविक को दुख होने से ना उपयोग कर सकता, कल्पना कर रहे हुए इसलिए क्या सुख बदल के दुख बदल बदल कर सुख थोड़ा हो सकता है, कल्पना सुख की कर ले इसका मतलब ये नहीं है कि ये दुख होते हुए भी सुख में ट्रांसफर हो जाए, ऐसा कभी बन सकता। छोड़ता नहीं लेकिन उपयोग छूट जाता, छूट जाता कि नहीं छूट जाता, ये ऐसा दृष्टांत देखने में आता है। पैसा तो बहुत कुछ पूर्व कर्म के योग से आ गया हो, लेकिन मेरे को पैसा का क्या करे, बहुत पैसा पड़ा है लेकिन शांति नहीं है, करे क्या, हमको तो शांति चाहिए, पैसा तो है पैसा तो करे क्या, उसको पैसा की कमी नहीं है लेकिन शांति नहीं है, इसके लिए क्या करे, बेचैनी हो जाती है, चैन नहीं है, सुख नहीं है, बनता है कि नहीं बनता। उसने सुख की कल्पना कर लिया इसलिए उसने सुख मिल जा रहा है, ऐसा कभी होता है, स्वरम समाधि संजात परमानंद एक लक्षण सुख सुधा सुख रूपी अमृत अमृत रूप है, वाकई अमृत है जिसके पीने से जीव का द्रव्य मरण भाव मरण खत्म हो जाता है। भाव मरण खत्म होता है तो द्रव्य मरण तो खत्म हो गए। सुख सुधा रसा स्वाद अनुभव गले न, ऐसा सुख रूपी अमृत का इतना रसास्वाद का अनुभव का बल मिलता है कि इस बल से विषयेषु मनागपी अनासक्ता, थोड़ा भी विषय में वो आसक्त होता इतना सुख अंतर में से मिलता है कि बाहर का दुख भोगने को मुनि का उपयोग लंबा था। अपना सुखामृत में तृप्ति इतनी आती है, इतना विश्राम होता है कि विश्राम का स्थान है अपनी जो आत्मा, जिसमें ज्ञान अनंत है वैसे सुख भी अनंत 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 सुख है। जो सुख की कुछ कमी नहीं है और जो सुख का कहीं अंत नहीं है, इस प्रकार से देखो तो उसमें कुछ कमी नहीं है और इस प्रकार से देखो तो इस आनंद स्वभाव सुख स्वभाव का कोई अंत नहीं है। तारतम्यता इतनी है कि जिस तारतम्यता की कोई उपमा नहीं है, अनुपम है। कितना सुख, इसकी सुख की डिग्री कितनी अंदर भरी है, उसकी डिग्री कितनी है, उसकी कोई उपमा दे सकते हैं। शीत की डिग्री होती है, उष्ण की डिग्री होती है, तारतम्यता के कॉन्सेंट्रेशन कितना कॉन्सेंट्रेट है। जो आता है ना सैकरिन तो बहुत मीठा है, तो बहुत मीठा कितना कि 500 टाइम्स स्वीटर देन द शुगर, तो शक्कर से 500 गुना ज्यादा है। ये कोई डिग्री तो माप कर सकते हैं ना, ये कोई आनंद की डिग्री होती नहीं। अनंत कहकर छोड़ देना पड़ता है, अनंत सुख है ऐसा करके छोड़ देना पड़ता है, इसका कोई नाप किया जा सकता ऐसा इतना सुख, इसका रसास्वाद आता है अनुभव में। और इसका बल जो उत्पन्न होता है, सुख का बल, देखो परमानंद एक लक्षण सुख सुधा रसास्वाद अनुभव बले न, कि अनुभव में इतना बल आता है सुख का कि विशेष मनाग भी अना सकता है। विषय में पर विषय में पांच इंद्रियों के विषय में थोड़ा भी तनिक भी इसमें आसक्ति उत्पन्न होती, सुख की बुद्धि सुख की कल्पना तो चौथे स्थान में खत्म होती है। कोई पर पुद्गल की अवस्था में इस आत्मा का सुख स्वप्नांतर में संयोग दृष्टि को भाषित होता नहीं, ये तो बुद्धि वहां से खत्म हुई, सुख बुद्धि पर में। अब रही चारित्र की अनाशक्ति की बात, पूर्व में अनाशक्ति आसक्ति थोड़ी रह जाती है, जो वस्तु है चला जाता है हे बुद्धि से निषेध होते होते हुए भी उपयोग चला जाता है पर विषय में। अभी तो उपयोग पर विषय में जाता ही नहीं, ऐसा कहते हैं। क्यों जाता ही नहीं कि अपना जो एक परम सुख है समाधि में उत्पन्न हुआ, इसमें इतनी तृप्ति, इतनी शांति, इतना आस्वाद है, वो अनुभव बल से थोड़ा भी जाता है, बिल्कुल नहीं जाता। अनुभव का इतना बल नहीं हो तो आसक्ति, जितना बल कम है इतनी आसक्ति हो जाती है, हो जाती है। और ज्ञान में जागृति है, ज्ञान रूप हूँ ऐसी अनुभव परिणति जागृत है, कभी सोई हुई नहीं है, इसका निश्चित उसमें चालू रहता है। इसमें एकाकार होते हुए उत्साहित होता किं कृत्वा, क्या करके, कि पूर्वं स्वस्वरूप परिग्रहं स्वीकारं कृत्वा, तत्वा कम उपधिं परिग्रहं, इसी बात है कि प्रथम में अपना स्वस्वरूप रूप परिग्रह है, वो परिग्रह निज परिग्रह है, उसको स्वीकारं कृत्वा, उसको ग्रहण करके, अपनी आत्मा को ग्रहण करके और अच्छी तरह ग्रहण करके, उसका नाम परिग्रह कहने में आता है चारों ओर से, अपनी आत्मा को ग्रहण करके फिर बाह्य उपाधि को, बाह्य पदार्थ को छोड़ के, उपधि उपधि नाम बाह्य पदार्थ, उसको छोड़ के, जैसे विश्व में बाह्य पदार्थ का त्याग करने वाले तो बहुत से लोग हैं। देखो, छोड़ दिया, त्यागी हो गया, सन्यासी हो गया, साधु हो गया, बाबा हो गया, फकीर हो गया, जो कुछ भी हो, लेकिन निस्वरूप को ग्रहण करके पर पदार्थ का त्याग किया, उसको सम्यक प्रकार त्याग करने में आता है। और निस्वरूप का समाधि में ग्रहण तो किया नहीं, और बाह्य पदार्थ को छोड़ दिया, तो उसको त्याग करने में आता। उसने तो पदार्थ को अयथार्थ रूप से तो ग्रहण किया है कि ये पर पदार्थ है, वही नुकसान का कारण है, छोड़ो उसको। ऐसा तो कोई पर पदार्थ को नुकसान का कारण है, वो तो जानता भी नहीं, जड़ है, जो जानता नहीं है तुझे नुकसान कैसे करे। तेरा भाव तुझे नुकसान करता है, उसको तो जानते हैं, और उसको तो सम्यक प्रकार अंतर्मुख होके संयमित करते नहीं, और सिर्फ बाह्य पदार्थ को छोड़ देते हैं, उसको क्या कहने में आता। इसके लिए तो ये 241 गाथा लिया है, अयथार्थ पदार्थ को अयथार्थ ग्रहण करके फिर कोई संयम मैंने दीक्षा लेता है, तो पदार्थ के स्वपर पदार्थ के विषय में भ्रम रहा, कोई संसार तत्व है, बाह्य त्याग हुआ इसलिए कोई संसार तत्व तो मिट गया हो, ऐसा है। कौन इसको तो संसार तत्व कहा, फिर ऊंचा नीचा का क्या प्रश्न है। जिसको यथार्थ ज्ञान है, मैंने देह और पर को भिन्न नहीं जाना, राग को भिन्न नहीं जाना, और फिर बाह्य त्याग तो कर लिया, तो उसको तो संसार तत्व कहा आचार्य। कि संसारी से उनका वो बात क्या रही, वो खुद ही संसार तत्व है, सारा संसार इसमें से फैलेगा, इसमें से सब उसकी संसार की फसल आएगी, वो तो मूल में संसारी है। फिर दूसरों को क्या कहना, नायक का नायक। पूर्वम स्वरूप रूप परिग्रहम स्वीकारम कृतवा त्यक्त्वा उपदिन परिग्रहम। पूर्व में पहले स्वस्वरूप को ग्रहण करके स्वीकार करके फिर दूसरे पदार्थ के विषय में अपनत्व छोड़ देना, आसक्ति छूटना, उसको त्याग कहने में आता है। किं विशिष्टम, कितना विशिष्ट है कि बहिथम मध्यथम, बहिस्थम क्षेत्र वास्तु वा आदि अनेक विधम मध्यस्थम मिथ्यात्वा आदि चतुर्दश भेद भिन्नम। वो परिग्रह कितने प्रकार के, किससे विशिष्ट है परिग्रह कि बहिस्थम जो बाहर के क्षेत्र, बाहर के क्षेत्र में है ऐसे है, और अनेक विधम अनेक विध जो है, और मिथ्यात्वादी चतुर्दश भेद भिन्नम, मिथ्यात्वादी जो अंतरंग है उस प्रकार का, वो जो विकार है वो विकार में ठीकपना महसूस करना, वो अंतरंग परिग्रह उसकी पकड़ आता है जो ठीक है। ये शुभ भाव किया, ये इतना तीव्र कषाय किया या मंद कषाय किया, कहीं भी ठीकपना मानना, वो अंतरंग परिग्रह वो विकार को पकड़ता है। और बाहर पदार्थ जो इसका विषय है, जो विकृत भाव का विषय है, उसको बाह्य परिग्रह कहने में आता है। ऐसे अंतरंग और बाह्य दो प्रकार के परिग्रह हैं, उससे भिन्न करते हैं अपने को। एवं गुण विशिष्टा विशिष्टा ये महात्मान ते शुद्धा शुद्धोपयोगिन इति निर्दिष्टा कथिता। एवं गुण विशिष्टा, इस प्रकार के गुण से जो विशिष्ट है, ऐसे जो महात्मा है, इसको महात्मा कहने में आता है। अपना परमात्मा स्वरूप की महत्ता जिसने धारण कर ली है, उसको महात्मा कहने में आता है। लोग सब ही महात्मा कह दे रहे इसलिए कोई महात्मा हो जाता है, ऐसा है। एवं गुण विशिष्टा, जो आत्मा के गुण के विशिष्ट हैं, आत्मगुण से विशिष्ट हुआ है, ऐसे जो महात्मा है ते शुद्धा, इसको शुद्ध कहने में आया है। शुद्ध कहने में आया इसका मतलब वो शुद्धोपयोगी है, इसीलिए उसको शुद्ध कहने में आया है। जिसके उपयोग में अशुद्धि नहीं, जिसका उपयोग का विषय त्रिकाली शुद्धात्मा है, इसका विषय का उपचार उपयोग में आता है, इसको शुद्धोपयोगी कहने में आता है। विषय शुद्ध है तो उपयोग शुद्ध का, विषय अशुद्ध है तो उपयोग को अशुद्ध कहा। नए का जो जितने भी नाम है पद्धति ऐसी चली है शास्त्र में, जो नए का जो विषय है उस तो विषय के अनुसार नए का नाम बोल कहने में आता है। वो 46 में अशुद्ध नहीं है, नए तो शुद्ध ज्ञान की निर्मल शुद्ध ज्ञान के अंश है। निर्मल जो प्रमाण ज्ञान, उसका जो अवयव रूप निर्मल शुद्ध ज्ञान का पर्याय, वो ज्ञान का पर्याय को नहीं कहा है और अशुद्ध नहीं कहा, तो क्या ज्ञान अशुद्ध हुआ कहने। वर्तमान अवस्था की अशुद्धि को विषय करने वाला ज्ञान का अंश को अशुद्ध नहीं कहने में आया। निकलेगा पीछे साधक को अपनी अवस्था में अशुद्धि होती है, और जो ज्ञान का प्रयोजन अशुद्धि को अग्नि करने का है, उस ज्ञान का अंश को अशुद्ध नहीं कहने में आता है। वैसे शुद्धोपयोगी की शुद्धा निर्दिष्टा, ऐसा कहा जिसका विषय शुद्ध है, और जिसकी विषय शुद्ध होने से अवस्था भी शुद्ध है तो उसको शुद्ध कहने में अनीन व्याख्यान मुक्तम भवती, ऐसा व्याख्यान से क्या कहा कि इत्थम भूता परम योगी न एव अभेदे न मोक्ष मार्ग इति अवबोधव्यम्। इत्थम भूता परम योगी न, इस प्रकार जो परम योगी है उसको ही अभेद नहीं से मोक्ष मार्ग जानना चाहिए। क्या कहा कि जिसकी अवस्था में मोक्ष मार्ग प्रादुर्भाव हुआ, मोक्ष मार्ग परिणत हुआ, तो अवस्था जो मोक्ष मार्ग रूप है उसको अभेद नहीं से उस आत्मा को मोक्ष मार्ग कहना चाहिए, जानना चाहिए। ये जो मुनि का आत्मा है, मुनि ही साक्षात मोक्ष मार्ग है। वास्तव में तो मुनि की जो दशा है वो मोक्ष मार्ग रूप है, लेकिन अभेद न अभेद नहीं से ऐसे जो परम योगी है उसको मोक्ष मार्ग जानना चाहिए। जैसे चोरी करने वाले को चोर जानना चाहिए तो ये सारा आत्मा को बोल देते ना वो चोर है। वैसे मोक्ष मार्ग में परिणत होने वाले आत्मा को मोक्ष मार्ग कहने में आता है कि मुनि साक्षात मोक्ष मार्ग है। अगर आपको मोक्ष मार्ग का दर्शन करना है तो मुनि का दर्शन करो, ये मोक्ष मार्ग है।
Thank you.